الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي آپ جانتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ جمعرات. کیا ہوتا ہے جمعرات کے دن؟ آج وہ دن ہے کہ جب ہمارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے، پورے ہفتے کی کارکردگی پیش ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی وجہ سے رمضان کے علاوہ بھی جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب عمل پیش ہوں تو آپ روزے سے ہوں. تو رمضان میں الحمدللہ ہم روزے سے تو ہوتے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھی آج کے دن اپنا ذکر بڑھا دیجئے، آج کے دن اپنی نیکی کو بڑھا دیجئے، کیونکہ ہمارے عمل پیش ہونے اللہ کے آگے. تو ہمارے پیٹ تو اللہ کی خاطر بھوکے ہوں، لیکن ہماری زبانیں بھی خشک ہوں اس کے ذکر سے، تاکہ رب کائنات ہم پر رحم فرما دے، ہمیں معاف کر دے اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے. تو یہ دن بھی امپورٹنٹ دنوں میں سے ہے. آپ دیکھیں، ایک بچہ جو ہے جب اس کی کاپی ٹیچر پکڑتی ہے نا، اور وہ دور سے بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری کاپی اب چیک ہونے لگی ہے یا میرا پیپر اب چیک ہونے لگا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بچے کو بھی اتنی سمجھ ہے، وہ دعائیں کرنے لگتا ہے، اچھلنا کودنا سب بند ہو جاتا ہے. وہ دعائیں کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے اب کیا ہوگا. تو آج کے دن کس وقت ہمارا نامہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہو، تو ہم دعائیں کرنے والے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اگر ہمارا نیکیوں میں دل نہیں لگ رہا اور دل پہ پردہ سا آیا ہوا ہے، تو اپنے لیے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں. حضرت علی کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے، امیر المومنین، میں پہلے رات کو اٹھا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اب میں کر ہی نہیں پاتا. فرمایا، تم وہ آدمی ہو جس کو اس کے گناہوں نے جکڑ لیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ گناہوں کی بڑی نحوست ہوتی ہے. ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں فلاں منحوس، فلاں شخص منحوس، یا فلاں گھر منحوس، یا فلاں دن منحوس، یہ ان میں نہیں نحوست. نحوست ہمارے اپنے گناہوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی خراب ہو جاتی، اسی وجہ سے نیکی میں دل نہیں لگتا، پھر اسی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. آج جس خباست پہ، جس بری عادت کے اوپر ہم بات کریں گے، وہ ہوتی تو زبان کے ذریعے، مگر اس کے پیچھے بھی دل کی گندگی ہوتی ہے. دل میں یا تو تکبر ہوتا ہے، دل میں یا تو اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے کہ میری میں کم نہ ہو جائیں، دل میں یا تو کوئی ریاکاری کی چاہت ہوتی ہے کہ دکھاوا ہو اور اس میں میں بڑی بن جاؤں. ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری وجود میں آتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، زبان جو بولتی ہے وہ دل کی عکاس ہوتی ہے. زبان تو صرف ادا کرتی ہے نا، اصل چیز پیچھے دل ہی ہوتا ہے. تو آج جو بیماری ہے، اس بیماری میں ہم میں سے اکثریت کسی نہ کسی درجے میں اس میں ملوث ہے، کسی نہ کسی درجے میں. بعض لوگ بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، بعض کا سٹیج کم ہے. ہوتے ہیں نا، بیماری کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں. تو یہ بیماری کس کو کس سٹیج پہ ہے، یہ خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور یہ بیماری ہے جھوٹ کی بیماری، اور اپنے آپ سے آج جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، انسان اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، میرے اندر تو کوئی ایسی بری عادت ہے ہی نہیں، میں تو نہیں جھوٹ بولتی. تو अपने आप से ही झूठ बोल रहा है। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल ठीक चल रही है। झूठ, खुद ही को खुद तसल्लियां देते रहना, झूठी तसल्लियां। तो बास की तो बात बात पे झूठ बोलने की आदत है। किसी से भी बात करेंगे तो झूठ के साथ, और एहसास भी नहीं हमें होता बाज दफा कि हम झूठ बोल रहे हैं। बाज दफा हम कहते हैं मेरे बच्चे ये कह रहे थे, हालांकि बच्चों बेचारों को पता भी नहीं। बात अपने दिल की है, नाम बच्चों का लगा दिया। बच्चों ने देर करा दी। बच्चों ने कहा देर कराई है, तो आपने खुद ही देर की थी। लेकिन आप दूसरे के सामने क्या करें अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए? अपने आप को बड़ा साबित करना है ना कि मेरी कोई गलती नहीं। अब उसके लिए झूठ का सहारा लेते हैं। इस तरह मेरे शौहर ने तो ये कहा, वो कहा है, वो तो बहुत गुस्से हो रहे थे, हालांकि शौहर ने, उसको पता भी नहीं है इस बात का। इसी तरह बाज दफा हम कहते हैं लोग ये कह रहे थे, हालांकि वो लोगों की बात नहीं होती, हमारी अपनी ही बात होती है, जो नाम लोगों का लगा के कह रहे होते हैं। तो झूठ, बाज दफा माएं झूठ बोलती हैं, बच्चे कहते हैं माँ ऐसा तो नहीं, तो माँ कहती बस चुप हो जा, तुम्हें नहीं पता। वो बेचारा खामोश हो जाता है। तुम्हारी जिंदगियां इस किस्म के झूठों से भरी पड़ी हैं, जिनको हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं। कोई चीज ली कितने की और बढ़ा के दूसरे को बता दिया, ये भी तकब्बुर जब अंदर होता है ना, ताकि रोब पड़ जाए किसी के, किसी को मेरी बड़ाई साबित हो जाए। कहीं पहुंचना था और नहीं गए, तो कह दिया हाँ मेरे तो सर में दर्द थी, हालांकि सर में कोई दर्द नहीं थी, बस खुद ही का दिल नहीं चाह रहा था या कोई और रीजन था। सर में दर्द का बहाना अच्छा था। तो इसी तरह आप देखें अपने खानदानों के बारे में झूठ, ताकि लोगों को ये बात साबित कराई जाए कि हमारा खानदान कितना ऊंचा है। झूठ होता क्या है? खिलाफ हकीकत बात। और अल्लाह ताला के सामने सच्चों की वैल्यू, आपको पता है अंबिया के बाद किसका दर्जा है? सिद्दीकीन का, जो सच्चे हैं। अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक कहलाए, सच्चे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था, कभी झूठ नहीं बोला था। और कयामत के दिन कुरान पाक में आप सूरह मायदा के एंड में देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत के दिन सच्चों को उनका सच फायदा देगा। यानी झूठों का झूठ वहां पे तो खुल ही जाना है, यहाँ पे चाहे जितनी भी अपनी इज्जतें बनाई, तो उस दिन सच्चाई फायदा देगी इंसान को। तो ये झूठ बोलना हमने छोड़ना है। और अगर हमें आज तक एहसास ही नहीं हुआ ना कि हम झूठ बोलते हैं, अब कम से कम जरूर देखें कि मैं कैसे जिंदगी में झूठ बोलती हूँ। झूठ में कहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा तो नहीं बन चुका? बाज लोग वो हैं जो रोज रोज तो नहीं झूठ बोलते, मगर जरूरतन बोल देते हैं। यानी किसी जगह अपना कोई काम पड़ा तो झूठ का सहारा लेके कुछ काम निकलवा लिया, कहीं फंस गए, पुलिस ने रोक लिया, कोई कहीं कुछ भी हुआ तो झूठ बोल के निकल गए। तो झूठ जिंदगी में रच बस चुका है, हमारी जिंदगियां झूठी हो चुकी हैं। हमारी सिर्फ बातें ही नहीं, हमारे एक्शंस भी झूठे हैं, क्योंकि हम वो बन बन के दिखाते हैं जो हम हैं नहीं। ये भी तो झूठ है, झूठी जिंदगी। जिधर बैठे वैसे हो गए, गिरगिट की तरह रंग बदलते, दीनदारों में बैठ गए दीनदार बन गए, दुनियादारों में गए वहां से बन गए। तो हमने झूठ का लबादा ओढ़ रखा होता है। क्या कभी अल्लाह की कायनात में भी आपने झूठ देखा? सूरज चांद बनने की कोशिश करे, देखो लोग चांद की बड़ी तारीफ करते हैं, मैं आपसे चांद बन बन के दिखाऊंगा, कभी देखा ऐसे? तारे चांद बनने की कोशिश करें, चांद सूरज बनने की कोशिश करें, नहीं, जो जैसा है वो वैसे ही अपने आप को दिखाता भी है। जबकि हमारी जिंदगियों में क्या है, हम वो बन के दिखाते हैं जो है नहीं। लिहाजा अपनी जिंदगियों के से झूठ को निकालने, ना सिर्फ जुबान से, जिंदगी से भी निकालना है। सोचें ये बात कि हदीस में आता है इंसान झूठ बोलता रहता है, बोलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह के हाँ ना, वो उसके हाँ किताब में वहां पे झूठा, उसका नाम झूठों की लिस्ट में डाल दिया जाता है, झूठा लिखा जाता है, फलां झूठा। सोचें अगर मेरा या आपका नाम झूठे की लिस्ट में लिखा हो, हम लोगों में कितने ही बड़े बन जाए, अल्लाह के हाँ हमारी क्या वैल्यू रह गई। और ये भी फरमाया कि इंसान सच बोलता है, बोलता है, हत्ता के अल्लाह के हाँ वो सच्चा लिखा जाता है। तो कभी हमें ये फिक्र हुई अल्लाह के हाँ मेरा किधर नाम लिखा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ। पूछा गया मोमिन बुजदिल हो सकता है? फरमाया हाँ। पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है? फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता कभी। जानते हैं आप जो आप दावा करते हैं, सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका दावा करने का क्या है? सबसे बेहतरीन बेस्ट वे कि मुसलमान मुसलमान बन जाए, ये बेस्ट तरीका। कुछ भी नहीं आपने करना, बस मुसलमान बन जाए, वाकई जैसे एक मुसलमान होता है, और मुसलमान झूठा नहीं होता। आज तो ये हाल है, हम पूरी दुनिया में झूठे मशहूर हैं। हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं, हमारे सर्टिफिकेट्स की कोई वैल्यू नहीं। लोग कहते हैं जाली बनवा के, झूठे बनवा के लाए हैं। गैर मुस्लिमों के सर्टिफिकेट और डिग्रियों की वैल्यू है, बिकॉज सबको पता है कि ये सच्ची ही होंगे। लेकिन कितने दुख की बात है, ये हमारी किसी चीज पे दुनिया आज भरोसा ही नहीं करती। वीजे झूठे, पासपोर्ट झूठे, उनके ऊपर डेट ऑफ बर्थ झूठी, एक्सपीरियंस लेटर्स झूठे, हर चीज झूठी। हर मुनाफिक की निशानी है झूठ। वो शख्स मुनाफिक है जो झूठ बोलता है, चाहे वो रोजा रखे चाहे नमाज पढ़े, उसके अंदर मुनाफकत की एक निशानी पूरी हो गई। और जानते हैं क्या कि झूठ की भी बदबू होती है, जिसकी वजह से फरिश्ते दूर भाग जाते हैं। अब हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन फरिश्ते भाग जाते हैं इस बदबू से। तो इन बातों को सोचते हुए हमें झूठ को छोड़ना है। और हम बाज दफा जो झूठ बोलते हैं ना, सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि हमारी इज्जत रह जाए। हालांकि जो झूठा इंसान होता है वो अपना एतबार लोगों में खो देता है, कभी वो लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि झूठ एक दिन खुल ही जाता है, उस पे जितने मर्जी पर्दे डाल दें। फिर दूसरा मसला ये, एक झूठ बोलते हैं तो वो एक नहीं रहता, उस झूठ को साबित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते, इस तरह गुनाह पे गुनाह पे गुनाह चढ़ता जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने से रिस्क घट जाता है, तो झूठ से ईमान में ही कमी नहीं आती, ईमान का ही नुकसान नहीं होता, माल का भी नुकसान होता है। अल्लाहु अकबर। तो ये जो चंद दिन के रोब और इज्जतें हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन रुसवाई का सबब बन जाए अगर झूठी जिंदगी गुजारते हुए चले गए। इवन यहां तक कि किसी की झूठी तारीफ भी ना करें, कि अगर कोई इस काबिल नहीं है, वो बुरा है, फासिक है, फाजिर है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, आप उसकी तारीफें कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ कि वो बड़े लोग हैं, कोई बड़े ओहदे वाले, बड़े मालदार हैं, बड़े घरों वाले हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी फासिक की तारीफ की जाती है तो अल्लाह ताला गजबनाक होता है और उसका अर्श कांप उठता है। हम कितनी दफा फासिक फाजिर लोगों की तारीफें कर रहे होते हैं और सोचते भी नहीं है, ये क्या अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है और मैं इसकी तारीफ कर रही। इसी तरह इवन ये तक कहा गया कि मजाक में भी झूठ ना बोलो, मजाक भी करें तो वो भी झूठी बातें कर करके मजाक ना करें। अल्लाहु अकबर। हाँ, किस वक्त झूठ बोल सकते हैं? जब दो लोगों में सुलह करानी हो, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, उनकी सुलह करवानी है, झूठ भी बोलना पड़े बोल दें। औरत कहती है मेरे शौहर ने आपसे जरूर मेरी बुराइयां ही की होंगी, तो आप कहें कि नहीं, वो तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, हालांकि उन्होंने नहीं की, उन्होंने वाकई बुराइयां की। लेकिन जब आप ये कहेंगे वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो आप सोचिए उसका कितना अच्छा इफेक्ट होगा उस पर, सुलह के चांसेस ज्यादा होंगे, और वहां पे हम सारी चीजें खोल के बताना शुरू कर देंगे। इसी तरह किसी को ये नहीं चाहिए कि दूसरों की जिंदगी में बहुत खोद कुरेद करने लगे, मसलन किसी से उसकी एज ना पूछे, क्योंकि तो हो सकता है वो झूठ बोले। अब आप जरिया बने उसके झूठ बोलने का, अब वो पता है कि कोई बताना नहीं चाहेगा, किसी से उसकी सैलरी ना पूछे, कितना कमाते हो, क्या है। बाज लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों से इस कदर पर्सनल सवालात करते हैं जिनको दूसरा बताना शायद ना चाहता हो। अब ऐसे मौके पे इंसान कहता है मैं क्या करूं, मैं मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ ना बोले उस वक्त के लिए, क्या है, तौलिया करें, क्योंकि तो बहुत सारी चीजें कोई नहीं बताना चाहता। गोलमोल जवाब दे दे, उसमें कोई राज नहीं है, इसी गोलमोल जवाब को तौलिया कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आपके पीछे थे, मक्का से निकल रहे हैं, और आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे उन्होंने ब्लड मनी रखा हुआ था कि जो इनको पकड़ के लाएगा उसको इतने ऊँट दिए जाएंगे। अब लोग तो आपकी तलाश में थे, ऐसे में एक काफिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के करीब से गुजरते हुए पूछता है ये आपके आगे कौन जा रहे हैं। अब रात है, अंधेरा है, उसको नजर नहीं आया। अब अगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला बता दें कि कौन जा रहे हैं तो वो पकड़ लेंगे, और अगर कुछ और कहते हैं, सच नहीं बोलते, तो झूठ हो जाएगा। तो देखिए ये है तौरिया के फरमाया, ये वो है जो मुझे राह दिखाता, ना इसमें झूठ था, और आपने जवाब भी दे दिया। तो ऐसे लोगों के ये इसी किस्म के जवाब होने चाहिए। मगर इसके अलावा जिंदगी के अंदर बात बात पे झूठ बोलना छोड़ दीजिए, और जो आज तक झूठ बोले हैं उनके ऊपर हमने अल्लाह से तौबा कर ली। सोचें क्या हम कभी ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला। कौन ये दावा कर सकता, सब अपने गिरेबानों में झांक के। तो झूठ तो है ना जिंदगी, ये झूठी जिंदगी लेके अल्लाह के सामने जाएंगे, झूठे अमल, झूठी बातें, झूठ के ये भी झूठ के जो है मैं वो नहीं हूं जो बन बन के दिखाती हूँ, झूठ सब झूठ, क्या हम लेके जा सकते हैं? और फिर इसकी तरफ कभी तवज्जो भी नहीं दी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है ना हमारा, कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आज इसके ऊपर तौबा करनी, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह ताला हमारी सारी कमियां कोताहियां हमसे दूर कर दे, हमें सच्चों में शामिल कर दे, हमें सिद्दीकीन के दर्जात अता फरमा दे। आज एक ऐसा अमल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसको हम कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, हालांकि वो बहुत बड़ा अमल है, बड़ा अजीम है। अबू दाऊद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स अल्लाह ताला के करीब तरीन है। को कौन हो सकता है करीब तरीन, कौन सा काम है जो कोई करता होगा जिससे वो अल्लाह के करीब हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा इबादत गुजार होगा, तहज्जुद गुजार होगा, या पता नहीं क्या करता होगा। हदीस में आता है इन्ना औलन्नास बिल्लाह तआला मन बदअहुम बिस्सलाम, जो सलाम में पहल करता है और लोगों में अल्लाह के नज़दीक होता है। तो सलाम करने में पहल कीजिए, और सिर्फ सलाम करें नहीं, समझ के करें कि लोगों के लिए वाकई सलामती भी बन जाए। सलाम क्या है कि आप दूसरे को सलामती का पैगाम देते हैं कि मेरी तरफ से आप सलामत हैं, मेरे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आपके ऊपर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो, इतनी प्यारी दुआ है। तो इसलिए सलाम को नेकी समझ के कीजिए, जस्ट एक ग्रीटिंग किसी के साथ मिलने को, जैसे हम कोई ना कोई लफ्ज़ तो बोलना है ना, दुनिया ने बहुत सारे बनाए हुए हैं, हाय हेलो गुड मॉर्निंग जो भी, कितने सारे आलन वसालन ठीक है सारे होंगे, लेकिन उनके अंदर वो बात नहीं है जो सलाम में है, क्योंकि सलाम इटसेल्फ एक इबादत है, अल्लाह का नाम अस्सलाम है, तो ये एक इबादत समझ के आपने करनी है कि मुझे ये मौके मिले कि मैं सलाम करूं। अपने घर में ही आप बहुत दफा कर सकते हैं, एक कमरे से दूसरे में जाते हैं वापस आते हैं तो जो पहले बैठे हुए थे उनको सलाम कर लीजिए, घर में ही आप लोगों को यानी उनसे ओझल होते हैं तो उसके बाद उनसे दोबारा बात करनी हो तो सलाम करके करें, फिर जिसको जानते हैं उसको भी सलाम कीजिए, नहीं जानते उसको भी सलाम कीजिए, क्योंकि कयामत के करीब में लोगों का ये हाल हो जाएगा कि सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम किया करेंगे, कयामत की निशानियों में से है, तो जो भी मुसलमान है उसको सलाम कीजिए। कितनी नेकियां हम सिर्फ सलाम करने से ही कमा सकते हैं, हेलो हाय से कोई नेकी नहीं मिलनी, सलाम करने से मिलनी है, ठीक है। आज का जो जिक्र है ना वो इसलिए बड़ा ही प्यारा जिक्र है कि हम सब तरह तरह की परेशानियों में घिरे रहते हैं, तो क्यों ना अपनी परेशानियों को अल्लाह के हवाले कर दें, क्यों ना अल्लाह हमारी परेशानियों के लिए काफी हो जाए। तो ये जो जिक्र है ये वो है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसको सुबह 7 दफा और शाम 7 दफा, मैंने आपको क्या बताया था कि ठीक है आप जितनी दफा भी मर्जी किसी जिक्र को करें, जितने भी आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक टाइम और जितना नंबर आपको बताया गया ना, जो हदीस में आता है, खुद से नहीं बनाया गया, जो हदीस में आता है इसको इस टाइम पे इतनी दफा पढ़ना है तो उसको उसी टाइम पे पढ़ना होगा तो ये फायदा मिलेगा। तो सुबह यानी फजर के बाद और शाम को असर के बाद जो 7 टाइम्स इसको पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसकी परेशानियों में उसके लिए काफी हो जाएगा, चाहे कहने वाला सच्चा हो या झूठा, या अबू दाऊद की रिवायत है, यानी देखें अब क्या जिक्र किया, पहले आपको वो बताती हूँ, यानी इंसान कहता है हस्बी अल्लाह काफी है मेरे लिए अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ नहीं कोई इलाह उसके सिवा, अलैहि तवक्कल तो मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, पता नहीं भरोसा किया भी है नहीं, पता नहीं उस पर रिलाई करता भी है या नहीं, चाहे सच्चा हो या झूठा हो अल्लाह काफी हो गया उसके लिए, अब कोई उसको यानी उसने अल्लाह के जिम्मे कर दिया, अब उसको खुद परेशान होने की जरूरत नहीं, वह हुआ रब्बुल अर्श अज़ीम और वो अर्श अजीम का रब है, तो बहुत बड़ा जिक्र है ये, क्योंकि परेशानियां किसको नहीं लाहक है, किसके नहीं कोई काम है जो उसको कराने हैं। और आज की जो दुआ है वो भी सोने से पहले आपने करनी है, ठीक है, जब आप बिस्तर पे जाएं सोने के लिए तो ये थोड़ी सी लंबी दुआ है, इसको किसी कार्ड पे लिख लें, किसी पेपर पे लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख लें, वो तो ज्यादा ही बेहतर है इसलिए क्योंकि फोन हमारे करीब ही होता है, तो फोन से आप देख के पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपने ये कलिमात कह दिए सोते वक्त तो उस रात अगर फौत हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इंसान फितरत पे फौत हुआ, फितरत क्या है इस्लाम, यानी वो इस्लाम पे फौत हुआ, तो ये देख लिए कि कितनी बड़ी सआदत मिल गई कि इस्लाम के ऊपर इंसान की मौत आए इस दुआ को पढ़ने से। दुआ क्या है, दुआ भी बड़ी प्यारी है, इसके माने भी बड़े प्यारे हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि इंसान क्या कितनी प्यारी बात कहता है इस दुआ में, अल्लाहुम्मा अस्लम तु नफसी इलैक, ए अल्लाह मैंने अपनी जान तेरे सुपुर्द कर दी, वज्जह तु वजही इलैक और अल्लाह मैंने अपना रुख तेरी तरफ कर लिया, वज होता है ना चेहरा, वफवद तू अमरी इलेक अल्लाह मैंने अपने काम तेरे हवाले कर दिया, सुपुर्द कर दिया। वलजअतु ज़हरी इलैक, तुझे अपना सहारा बना लिया, पुश्त पनाह बना लिया। रग़बतन व रहबतन इलैक, रग़बत करते हुए तेरी तरफ और तुझसे डरते हुए। और फिर इतनी प्यारी बात है, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ये बात मुझे बहुत ही पसंद है। ऐ अल्लाह, कोई पनाह की जगह है ही नहीं तेरे सिवा, और ऐ अल्लाह कोई निजात नहीं तेरे सिवा, कहाँ जाऊं यानी, कोई पनाह नहीं, ऐसे लगता है ना कोई लॉस्ट है, यहाँ कोई ऐसा है जिसके पीछे कोई दुश्मन लगा हुआ, उसको पनाह चाहिए, कहीं पनाह नहीं है, किधर जाए वो ऐसा बेसहारा इंसान, सिर्फ तेरी पनाह चाहता है, क्योंकि तेरी पनाह के अलावा कोई पनाह नहीं। तो जितने मर्जी गुनाहगार हैं, जितने मर्जी गुनाहगार, अल्लाह हमारी पनाह सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कोई पनाहगाह है ही नहीं हमारे लिए। अल्लाह ना हमें कभी धुतकारे, क्योंकि फिर हमारे लिए कौन सा ठिकाना है और निजात कहाँ है हमारे लिए फिर, और किधर जाके हम अपनी हिफाजत का सामान कर सकते हैं, कोई जगह नहीं, कोई पनाह देने वाला नहीं। अल्लाह तेरी पनाह के सिवा कोई पनाह है ही नहीं, और पनाह किसको चाहिए होती, वो जो बेसहारा है, जो कमजोर है, जो मिस्कीन है, जो खतरे में है, जिसको कोई ठिकाना नहीं मिलता। ऐसे हम कहते हैं ना पनाह गजीन रेफ्यूजीज को कहते हैं, जिनका अपना बेचारों का कोई घर बार नहीं रह गया होता, तो ये पनाह होती है। और पनाह उससे मांगी जाती है जो ताकतवर होता है, कुदरत वाला होता है, जो पनाह दे सकता है, जो हिफाजत कर सकता है। तो अल्लाह मेरे लिए तो कोई पनाहगाह है ही नहीं, कोई निजात की जगह है ही नहीं तेरे सिवा। आमन तो भी किताब कल्लदी अंजलत, मैं ईमान लाया उस किताब पे जो तूने नाजिल फरमाई, वह भी नबी ये कल्लदी अरसलता, और उस नबी पे जिसको तूने मबूस किया उस पे ईमान लाया। ये कह के जब आप सोते हैं तो अब मौत भी आ गई, तो इंशाल्लाह इस्लाम पे होगी। तो ये दुआएं बड़ी कीमती हैं, और खास तौर पे याद रखिए रमजान की दुआएं कबूल होती हैं। इसका सबूत क्या, सूरह बकरा में जहां पे रमजान का जिक्र आया, रोजे का जिक्र आया, अगली आयत में ही आ गया दुआ की बात। वइजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दअन, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे पूछे तो आप बताएं कि मैं तो करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। तो उलमा कहते हैं इस आयत का यहाँ पे होना इस बात का इशारा है कि रोजेदार की दुआ कबूल की जाती है, क्योंकि इससे पहले रोजे की ही बात, माहे रमजान की बात है। तो ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, महीना है। और जैसे कि हमें पता है इफ्तार के वक्त तो दुआ कबूल होती है, इब्ने उमर ने फरमाया कि मोमिन की दुआ इफ्तार के वक्त जरूर कबूल होती है, या तो दुनिया में कबूल हो जाएगी या फिर आखरत के लिए जखीरा कर दी जाएगी। इसीलिए वो खुद फरमाते थे या वास्याल मगफिरा वो फिर ली है, बेपनाह मगफिरत करने वाले मुझे बख्श दे। तो इफ्तारी के वक्त तो ठीक है, हमें सबको पता है, मगर इसके अलावा भी रोजेदार की दुआ सारा दिन ही कबूल होती है। इसका सबूत क्या है, ये हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, तीन लोगों की, वो कौन से हैं, बाप की दुआ, रोजेदार की दुआ और मुसाफिर की दुआ। तो हम रोजा रखते हैं ना, तो हम फिर दुआओं पे बहुत जोर दें। इमाम नववी फरमाते हैं रोजेदार को चाहिए सारा दिन वो दुनिया और आखिरत की भलाइयां मांगता है, क्योंकि इस हदीस से पता चलता है कि रोजेदार के लिए सारा दिन ही दुआ करना मुस्तहब है, उसकी दुआएं कबूल होती रहेंगी। तो सिर्फ इफ्तारी का इंतजार ना कीजिए, पूरा दिन ही दुआएं करते रहिए। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा ले। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।